भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां?
कल संडे को अचानक से सुबह 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर से एक हिस्सा टूटा और ऋषि गंगा नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी वजह से दो पावर प्रोजेक्ट्स जो नदी के ऊपर थे दोनों में काफी नुकसान हुआ और वहां जितने भी लोग काम कर रहे थे लेबर्स वहीं पे फंस गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 202 लोग इन दोनों इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में फंस गए और अभी तक 170 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। रेस्क्यू कार्य अभी चल रहा है और करीब 27 लोगों के मरने की खबर भी सामने आ रही है। करीब 17 मजदूरों को इसमें से बचा भी लिया गया है।
तो राहत और बचाव के लिए किस तरह से कार्य चल रहा है, क्या इंतजाम है, सरकार किस तरह से मदद कर रही है और UN एजेंसियां इसमें किस तरह का सहयोग दे रही हैं?
सरकार का जो रिस्पांस था बहुत ही रैपिड रिस्पांस था और राहत और बचाव कार्य बहुत ही तेजी और एफिशिएंसी के साथ शुरू कर दिया गया। इन इलाकों में SDRF, ITBP, इंडियन आर्मी और चमोली पुलिस के एडवांस ग्रुप और 200 से ज्यादा जवान पिछले 20 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। ये भी माना जा रहा है कि करीब 14 गांव हैं जो आउट ऑफ कनेक्टिविटी हो गए हैं पुल टूटने की वजह से। उन गांव में भी जो सरकार है उसने इंतजाम किए हैं कि खाने की सामग्री, दवाइयाँ, जो भी इम्पोर्टेंट सामान है उनको पहुँचाया जाए, बाई एयर पहुँचाया जाए। UNDP का भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है स्टेट में और हम लोग कमिटेड हैं, जो भी जरूरत होगी सरकार को, जिस भी तरह का सपोर्ट की जरूरत होगी, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड दैट टू द गवर्नमेंट।
तो आपने कहा दो बिजली परियोजनाएं यहाँ पर काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये इलाका पारिस्थितिक रूप से बहुत नाजुक माना जाता है और लंबे समय से एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ बांध और बिजली संयंत्रों जैसे भारी निर्माण के खिलाफ आगाह करते रहे हैं। तो क्या ये आपदा एक संकेत है और इस आशंका को पुख्ता कर रहा है?
ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दो बिजली परियोजनाएं हैं, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और उसके थोड़ा ही आगे नेशनल NTPC का पावर प्लांट जो है, जो धौली गंगा रिवर के ऊपर है, ये दोनों ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है उसमें पूरे के पूरा प्रोडक्शन यूनिट, डैम और सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जो तपोवन एरिया में NTPC का पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी खबर कोई खास अच्छी नहीं है, बहुत सारे लेबरर्स अभी तक भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि ये एक इको सेंसिटिव एरिया है और एक बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे बहुत ही फ्रजाइल एरिया है, फ्रजाइल जोन है और कोई भी क्लाइमेट चेंज का असर इसके ऊपर बहुत जल्दी दिखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी इंटेंस रेनफॉल हुआ या टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट इस तरीके के इवेंट से इम्पैक्ट दिखता है। और मुझे लगता है कि एक हमें ज़रूरत है कि हम कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन सामने लाएं जिससे कि हम इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस करते हुए के साथ साथ काम करें।
तो अभी तक क्या हालात हैं वहाँ, जानो माल का कितना नुकसान हुआ है और किस तरह के नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है?
जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, तो माल का तो काफी नुकसान है, जान का नुकसान भी काफी है। 200 लोगों से ज्यादा लोग अभी तक मिसिंग हैं, जिसमें से काफी लोग, लास्ट खबर आने तक 27 से 30 लोगों के मरने की खबर भी सामने आ रही है और कुछ लोग हैं जिनको रेस्क्यू भी किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्योंकि ये पानी एक नैरो वैली जो है, रिवर की वैली है, उसमें बहुत तेजी से आया, तो जो गांव थोड़े ऊपर रिजेस एरिया में थे वो ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं हुए हैं। ज्यादा इम्पैक्ट जो है ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही हुआ है और इसमें जो लोग काम कर रहे थे, इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, मजदूर, ये लोग हैं जो फंसे हुए हैं और सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हैं।
तो इससे पहले 2013 में भी हमने उत्तराखंड में हिमालय सुनामी और उससे हुई तबाही के मंजर देखे हैं। पिछले सालों में क्या कुछ बदला है कि हालात बेहतर हो सके और जानो माल का नुकसान ना हो?
2001 से ही UNDP सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे काम कर रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। जब यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, UNDP ने हेल्प किया था गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में और करीब 20 सालों से UNDP गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि ये एक बहुत ही फ्रजाइल और इकोसिस्टम है। 2013 में भी ऐसा ही एक इंटेंस रेन फॉल इवेंट हुआ था, जिसकी वजह से एकदम से फ्लैश फ्लड आया और काफी ज्यादा जानो माल की हानि हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रिकवरी में काफी तत्परता से स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है, कम्युनिटीज को सपोर्ट किया है और काफी तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग हुई है उन एरियाज में। बट जैसे कि आपने कहा कि ये एक बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है और काफी यहाँ पे बार बार यहाँ पे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम आगे के लिए एक प्रिपेयर्डनेस की तरफ जाएं कि कैसे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाएं और प्रिपेयर कर पाएं अपने आप को, ताकि हम इन ऐसे इवेंट्स को हैंडल करने में और तत्परता से सक्सेसफुल हों।
एक मसला और है, ये मौसम सर्दियों का था और इस मौसम में हिमस्खलन देखने को नहीं मिलते हैं, ग्लेशियर टूटने का ये मौसम नहीं है। तो इन सब का कारण, जैसा कि आपने कहा, कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन है या हो सकता है। तो क्या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में कुछ कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जलवायु, काफी एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन ही इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि ये एक हैरानी की बात है कि सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर इतने हाई नहीं रहते हैं तभी भी एक एक ग्लेशियर से ये एवलांश टूटा और इसने ये इतनी बर्बादी कर दी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन ही इसकी वजह है। कुछ साल पहले यूएनडीपी ने यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज की बात की है। उत्तराखंड जैसे फ्रिजाइल एरिया के लिए जरूरी है कि हर सेक्टर में हम क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, जिसमें हम लोकल कम्युनिटीज, लोकल लोगों को साथ लेते हुए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए और गवर्नमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करते हुए कि कैसे हम लोग किस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या एक्टिविटीज करें ताकि कम से कम नुकसान हो किसी भी ऐसे डिजास्टर इवेंट में या कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज इवेंट में। तो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटजी हर सेक्टर के लिए एक बहुत ही जरूरत है यहाँ उत्तराखंड में।